कौन पाठक इतना कठकरेज होगा जो एक अबला के स्क्रंदन पर फूट न पड़ेगा। इसी एक प्रभाव के लिए तो पूरी कहानी गढ़ी गई है। पाठक रो पड़ा तो कहानी का उद्देश्य पूर्ण, कहानीकार का श्रम सार्थक। लेकिन क्या इस करुण प्रभाव का विश्लेषण आवश्यक नहीं है? क्या इस प्रभाव की प्रकृति अथवा गुण का प्रश्न नहीं उठता? क्या हमारे मन में यह ख्याल नहीं आता कि यदि बहुत अच्छी होती तो उस सात पुरुष की मृत्यु न होती? और जबकि हम उसी कहानी में एक कम अच्छे रिटायर्ड व्यक्ति का जीवन अच्छी बहू के कारण सुखी देखते हैं, तो मन में तुरंत यही यह सारी दुखांत गाथा केवल एक रिटायर्ड व्यक्ति और एक खराब बहू की ठहरती है। और जो कहानी केवल एक की है हो उसके बारे में फिर दुख क्या? कहानी खत्म हुई, आंसू बहे, आंसू सूखे, कहानी खत्म हुई। पाठक अपनी जगह, कहानी अपनी जगह, कहीं कोई फर्क नहीं आया। थोड़ी देर के लिए जो दया, सहानुभूति या भावुकता जगी, वह एक सुखद संतोष में परिश्रमित हो गई। एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लेखक ने जो इतनी मेहनत की, वह एक क्षण के विचार से ध्वस्त। यह लेखक की जीवन दृष्टि की दुर्बलता है या कहानी शिल्प की अथवा अन्योन्याश्रित रूप से दोनों की? इस तथ्य को स्पष्ट करने में संभव है कि किसी विषय वस्तु की एक दूसरी कहानी से कुछ सहायता मिले। यह दूसरी कहानी है सुश्री उषा प्रियंवदा की वापसी, जो नई कहानियां में ही अगस्त 60 में प्रकाशित हुई और जिसे पत्रिका की ओर से वर्ष का प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह कहानी भी एक रिटायर्ड आदमी की है। गजाधर बाबू रेलवे में छोटे स्टेशन मास्टर थे। 35 साल की लंबी नौकरी के बाद रिटायर होकर घर लौटे। सारा जीवन अकेले बीता, घर से दूर और परिवार से एकदम अलग। आशा थी अंतिम समय सुख और स्नेह से बीतेगा। घर में सभी थे, पत्नी, पुत्री, पुत्र, बहू आदि, सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ था। लेकिन परिवार में वे खप न सके। हताश वे कुछ दिनों में वापस लौट पड़े उसी जगह जहां वे स्टेशन मास्टर थे। वहीं उन्होंने एक चीनी मिल में नौकरी ले ली। गजाधर बाबू की वापसी पर किसी की आंख में आंसू नहीं, एक विषाद की छाया है जो क्रमशः गहरी होती जाती है। केवल दया नहीं, केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि एक जीवन के प्रति एक गहरा पीड़ा बोध। इस रिटायर्ड आदमी का अकेलापन जैसे अपरिहार्य है। अकेलेपन से निकलना चाहते हुए भी वह फिर उसी अकेलेपन में वापस जाने के लिए लाचार हो जाता है। और क्या यह अकेलापन एक गजाधर बाबू का ही है? क्या ऐसा नहीं लगता कि यह अकेलापन बहुत व्यापक है? ऐसा अकेलापन जो कहीं न कहीं आज सबके अंदर मौजूद है, परंतु जिसका सहयोगी कोई निकटतर से निकटतर व्यक्ति भी नहीं हो सकता। कहानी का यह अभिष्ट प्रभाव किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं है और न इसकी कोई शास्त्र निरूपित निश्चित चरम सीमा ही है। यह प्रभाव आद्योपांत पूरी कहानी पर जैसे व्याप्त है, इसलिए कथा विन्यास भी एक सामूहिक प्रभाव डालने वाले कथानक की तरह गढ़ा हुआ नहीं है। कह सकते हैं कि इसके गठन में चिर परिचित कथानक सुलभ घटना विन्यास नहीं, बल्कि प्रसंगोपात घटनाओं का संकलन है। जहां एक शिल्पहीन कहानी के कथानक में सायास शिल्प है, वहां वापसी में अनायास शिल्प का आभास मिलता है। छोटी छोटी घटनाओं के दृश्य चित्र सामने आते हैं और सभी चित्र कुल मिलाकर एक जीवन मर्म का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। कहानी वर्णनात्मक से अधिक चित्रात्मक है। चरित्रों के क्रियाकलापों पर आलोचनात्मक टिप्पणियां कम से कम हैं, क्रियाकलापों का तथ्यपरक अंकन ही अधिक है। घर में गजाधर बाबू के प्रवेश करते समय का पहला ही चित्र जैसे संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट कर देता है। गजाधर बाबू को देखते ही वहां एक सकपकाहट भरा सन्नाटा छा गया। बहू ने झट से सर ढांप लिया और नरेंद्र ने बैठकर चाय का प्याला होठों से लगा लिया। केवल हंसी दबाने के प्रयत्न में बसंती का शरीर रह रह कर हिलता रहा। गजाधर बाबू ने चाहा कि वह भी उस मनोविनोद में भाग लेते, लेकिन उनके आते ही सब चुप हो गए तो उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, चाय मुझे भी देना बसंती, लेकिन चाय भी मिली तो फीकी। पत्नी के आते आते सभी चुपचाप खिसक चुके थे। उन्होंने गजाधर बाबू को देखा तो चौंक कर बोली, अरे आप अकेले बैठे हैं? अपने ही घर में गजाधर बाबू की क्या स्थिति है, उनकी चारपाई जैसे उस स्थिति का प्रतीक है। कुछ दिन तो वह चारपाई बैठक में पड़ी रही, जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थाई प्रबंध कर दिया जाता है। फिर पत्नी के छोटे से कमरे में डाल दी गई, जो एक तरह से घर का माल गोदाम था। उनके जाने के बाद सबसे पहले जो काम किया गया वह था उस चारपाई का हटाया जाना, और वह भी स्वयं उनकी पत्नी के द्वारा। इस प्रकार उनका अस्तित्व घर के वातावरण का कोई भाग न बन सका। उनकी उपस्थित उस घर में ऐसी असंगत लगी जैसे कि सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई। गजाधर बाबू को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति को उनकी पत्नी को भी नहीं समझ सकती। बात करते ही वे गहरा अकेलापन अनुभव कर उठते थे। निर्गुण की एक शिल्पहीन कहानी के रिटायर्ड आदमी के दुख का कारण यह बहू का स्वभाव है, तो उषा प्रेमवदा की वापसी के रिटायर्ड आदमी के दुख का कारण तो वह स्वयं है, और बहुत कुछ पूरी स्थिति के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना असंभव है। यदि एक कहानी में दुख का कारण बाहरी है तो दूसरी में भीतरी। यह अंतर दोनों कहानियों के केंद्र बिंदु में काफी अंतर उत्पन्न कर देता है। यहाँ तक कि वापसी की थीम एकदम भिन्न हो जाती है। स्पष्ट ही यह दो जीवन दृष्टियों का अंतर है। इससे दोनों कहानियों के रूप विन्यास एवं शिल्प में अंतर आ गया है। यदि निर्गुण भावतापूर्ण ढंग से कहानी कहते हैं तो उषा प्रेमवदा की कथन शैली में एक प्रकार की तलखी लिए तटस्थता है। कथा नायक के प्रति वापसी में कहीं अतिरिक्त सहानुभूति नहीं उभरने पाती, बल्कि उसको यथासंभव असंगत एवं उपहासास्पद दिखाया गया है। कथानक की पत्नी के व्यक्तित्व में जो उदासीनता, तलखी और अंदर दबी हुई ममता का मिला जुला भाव है, वही पूरी कहानी का स्वर है। कहना न होगा कि कुल मिलाकर वापसी निश्चित रूप से एक शिल्पहीन कहानी से अच्छी है, और वापसी के साथ रखकर देखने पर एक शिल्पहीन कहानी की दुर्बलताएं स्पष्ट रूप से सामने आ जाती हैं। यदि अति सरलीकरण का खतरा उठाकर एक वाक्य में कहना हो तो निर्गुण की कहानी की कमजोरी का मुख्य कारण है लेखक की भावुकता। आंसुओं से लेखक की दृष्टि इतनी धुंधली हो गई है कि वह जीवन की जटिल स्थिति की गहराई को भेद नहीं सका। इसीलिए निर्गुण की कहानी में प्रस्तुत जीवन का एक ऊपरी चित्र मिलता है। जिन घटनाओं के सहारे कथानक गढ़ा गया है वे केवल सतह के एक भाग को स्पर्श करती हैं, और पूरी कहानी एक रोमांटिक भावुकता जगा कर रह जाती है। यहाँ तक कि उपेक्षित कविता और शिल्पहीन कहानी वाले वक्तव्य स्वयं लेखक के अपने भावुक निवेदन प्रतीत होते हैं। इस आत्मनिवेदन को भी भावुकतावश लेखक दबाने में असमर्थ है। कहानी के अंदर वह स्वयं ही आ पड़ता है। पुरुष होकर निर्गुण जहाँ घड़ों आंसू बहाते हैं, वहाँ नारी होकर उषा प्रेमवदा एक बूंद भी आंसू नहीं ढुलकाती। क्या यह आकस्मिक है? सवाल यह है कि निर्गुण जैसे सिद्धहस्त और पुराने कहानीकार जहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, वहाँ उषा प्रेमवदा जैसी एकदम नई कहानी लेखिका में इतनी प्रवृत्ता कहाँ से आ गई? क्या यह आकस्मिक है? क्या यह अंतर केवल दो कहानियों का है? और आगे बढ़कर कहें तो क्या यह अंतर केवल दो कहानीकारों का है? क्या यह अंतर दो युगों की कहानियों तथा कहानीकारों का नहीं हो सकता? निर्गुण की कहानी की भावुकता तथा भावुकता उत्पन्न करने वाला कथानक गढ़ने के लिए इस्तेमाल किसी नुस्खे का क्या पुराने नहीं है? पुराने अर्थात पुराने युग के, पुराने युग बोध के। इस आधार पर यदि कोई कहे कि आज निर्गुण की कहानी अच्छी नहीं लगती क्योंकि पुरानी कहानी है, तो इस कथन में क्या त्रुटि है? इसके बावजूद यदि वह कहानी किसी को अच्छी लगे, अच्छी लगती है और आज भी कोई उसे पढ़कर रो पड़ता है, तो लाचार होकर कहना पड़ेगा कि उसका भावबोध आज का नहीं बल्कि मूलतः पुराना है, बीते युग का है। और जब मैं उस भावबोध को पुराना कहता हूँ, तो मेरा मतलब केवल कहानी संबंधी भावबोध से नहीं बल्कि जीवन और समाज संबंधी पूरे भावबोध से है। आश्चर्य तो तब होता है जब ऊपर से नवीन जीवन दृष्टि की घोषणा करने वाले लोग भी ऐसी कहानियों के सामने निरस्त्र हो जाते हैं और अभ्यास जनित प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में तो प्रगतिशील एवं नवीन जीवन दृष्टि की बात करते हैं, किंतु कहानी के क्षेत्र में पुरानी रुचि को पालते जा रहे हैं। और तुर्रा यह कि उसका औचित्य प्रमाणित करने के लिए क्लासिक मानवतावाद एवं स्वस्थ सामाजिक दृष्टि का नाम लेते हैं और ऐसे मामलों में अपने को पुराना कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। क्या यह भी एक तरह की स्नावरी नहीं है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कविता के क्षेत्र में तो नए भावबोध तथा नए रूप विधान के कायल हैं, लेकिन कहानी के मामले में पुरानेपन की ही आस लगाए रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सह अस्तित्ववादी एक ही साथ नए और पुराने दोनों को ही पसंद कर लेने की क्षमता रखते हैं। खंडित व्यक्तित्व की तरह यह भी क्या खंडित रुचि का सूचक नहीं है? निसंदेह एक समरस एवं अविभाज्य भावबोध का निर्माण दीर्घ प्रक्रिया है, किंतु जहाँ ऐसे भावबोध के निर्माण के लिए प्रयत्न करने की जगह मन में अपनी अपनी जगह नई पुरानी सभी रुचियों को सुरक्षित रखने का बौद्धिक आलस्य दिखाई पड़े, वहाँ साहित्य के वास्तविक मूल्यांकन की क्या आशा की जा सकती है? ऐसी ही स्थिति में साहित्य के दोहरे मानदंड इस्तेमाल होते हैं और अराजकता फैलती है। कोई जरूरी नहीं है कि हर रचना को साधारणतया अच्छी कहा ही जाए। साहित्य स्कूल नहीं है और न लेखक छात्र, और इस प्रकार आलोचना चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है कि किसी को खासा अच्छा, किसी को साधारणतया अच्छा और किसी को संतोषप्रद लिखकर सबको खुश रखा ही जाए। जब कोई कहता है कि कहानी ठेठ शास्त्रीय अर्थ में नई न होकर भी अच्छी हो सकती है, तो इस वाक्य का ठीक ठीक अर्थ समझना कठिन लगता है। किसी कहानी का नई होकर भी अच्छी न हो पाना तो समझ में आता, किंतु नई न होकर भी अच्छी होने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है पुराने रूप में भी अच्छी? लेकिन यह कौन सी साहित्यिक समझ है जो रूप और वस्तु को भिन्न समझती है? क्या रूप केवल अभिव्यक्ति का वाहन है? क्या रूप वक्तव्य अन्वेषण, चिंतन और विभावन का अनिवार्य साधन नहीं है? उषा प्रेमदा की कहानी वापसी का रूप क्या पुराना है? निस्संदेह कुछ लोगों को ऊपर से देखने पर इस कहानी का रूप काफी पुराना लग सकता है, किंतु ध्यान से देखने पर लगेगा कि कहानी का मूल स्वर एकदम नया है, जो कहानी की भाषा से भी सूचित हो सकता है। मुझे शक है कि जो लोग वापसी के रूप को पुराना समझते हैं, उनका दिमाग इस कहानी के वक्तव्य का भी कोई पुराना ही रूप ग्रहण करता है और वे इस कहानी के नाम पर किसी और कहानी को पसंद करते हैं। यह आकस्मिक नहीं है कि पुरानी रुचि के लोग बार बार नई कहानी की जगह अच्छी कहानी का सवाल उठाते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि जीवन में बार बार अच्छे आदमी की बात कौन लोग चलाते हैं। आदमी अच्छा होना चाहिए, विचारधारा चाहे जो हो। ऐसे वाक्य के पीछे छिपी हुई भनमनसाहत की तरह तह में कभी कभी कितने दकियानूस और खतरनाक ख्याल पलते हैं। इसे बहुत खोल कर कहने की जरूरत नहीं है। क्या अच्छी कहानी की बांग देने वाले अच्छे आदमियों की भनमनसाहत से भी ऐसे खतरे नहीं हैं? श्री शिवदान सिंह चौहान जैसे अच्छे आलोचक को जब रामकुमार की कहानी एक चेहरा के सिर पैर का पता नहीं लगता, लेकिन चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी जिंदगी की कीमत कहानीपन में पुराने ढंग की लगते हुए भी पढ़कर संतोष तो देती है और साधारणतया अच्छी कहानी मालूम होती है तो साफ हो जाता है कि उनकी अच्छी कहानी का क्या रहस्य है। उधर चंद्रगुप्त विद्यालंकार को ऐसा प्रतीत होता है कि टेक्निक की दृष्टि से कहानी नामक यह साहित्य माध्यम क्रमशः इतना नपातुला और एग्जैक्ट बन गया है कि अच्छी कहानी लिखना एक अत्यंत कठिन कार्य बन गया है। कठिनाई का कारण ध्यान देने योग्य है, शायद इसीलिए वे केवल एक साधारणतया अच्छी कहानी ही लिख सके। फिर भी चंद्रगुप्त जी को यह पढ़कर कम संतोष नहीं होगा कि जो चौहान जी उनके कभी प्रशंसक नहीं रहे, उनके अनुसार भी वह अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है। अब कौन पूछे कि क्या अपने आप में मुकम्मल कहानी क्या चीज होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिनके लिए कोई कहानी अपने आप में मुकम्मल हो सकती है, उनकी आलोचना भी अपने आप में मुकम्मल रहती है, किसी भी प्रश्न के लिए एकदम बंद। दरअसल कहानी की एक ऐसी लीक बन चुकी है कि आज की किसी के लिए भी अपने आप में एक मुकम्मल कहानी लिखना आसान हो गया है, जिसे पढ़कर साधारणतया अच्छी कहानी कहने में किसी को भी कठिनाई न होगी। और चौहान जी जैसे अच्छे तथा अथवा साधारण अच्छे आलोचकों को संतोष भी हो सकता है। जब कोई पाठक या आलोचक अपने सहज अनुभव के आधार पर कहता है कि इधर की अधिकांश प्रकाशित कहानियां एक सी और एक तरह लगती हैं, तो वह जाने अनजाने इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। आज जो लेखक कहानियां लिख रहे हैं, वे भी कहानी संबंधी इस आसानी को जानते हैं, लेकिन कहने वाले शायद वही होंगे जो किन्हीं अन्य साहित्यिक कारणों से कहानी लिखना छोड़ चुके हैं। इसलिए जो लोग अपने आप में मुकम्मल और साधारणतया अच्छी कहानी से संतोष कर सकते हैं, उन्हें आज भी निराश न होना पड़ेगा, किंतु जो इस एक रास्ता से बाहर निकल कर सचमुच कुछ नया लिखना और पढ़ना चाहते हैं, उनकी समस्याएं और हैं, उनके प्रश्न और हैं। वे व्याप्त परंपरा में शिल्प या सामग्री संबंधी कुछ इजाफा करके ही संतुष्ट नहीं हो सकते, बल्कि वे सर्वथा अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। वह क्षेत्र जिसमें रिल्के के अनुसार अभी तक किसी शब्द से कदम न रखा हो, यह एक प्रकार से अविवक्षित को विवक्षित करने का प्रयास है। जो मुद्दत से एक नाम को प्राप्त करने को तड़प रहा हो, उसे एक सही नाम देने की कोशिश है। पहले पहल किसी चीज को हाथ में लेकर एक रूप देने का प्रयत्न है। यह पहले पहल वाली बात ही किसी कलाकृति को वह ताजगी प्रदान करती है, जिसके कारण वह वर्षों बाद भी एकदम आज की बनी हुई मालूम होती है। बाद के नए से नए प्रयोगी भी किसी रचना की इस प्राथमिकता को मिटाने में असमर्थ होते हैं। वह प्रथम प्रयास जिसे किसी कृति की रचना होती है, उसमें बराबर बना रहता है। सृजनकालीन सारी तात्कालिकता वह आकांक्षा, वह संघर्ष, वह पीड़ा रचना का अविच्छिन्न अंग बन जाती है। इसी गुण के कारण क्लासिक कहानी कृतियां आज भी नई लगती हैं, और इसी गुण के अभाव में परंपराभुक्त कृतियां बासी और मध्यम कोट की प्रतीत होती हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में नव अन्वेषण की इस वृत्ति का नाम सृजनशीलता है। यह नए फैशन को ललक भर नहीं बल्कि साहित्य का एक मूल्य है। विज्ञान के यह मूल्य सर्वस्वीकृत हो चला है और सिद्धांत के स्तर पर साहित्य और कला के क्षेत्र में भी आधुनिक युग के रचनाकारों ने इसे मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है।